पर रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनीश श्रीवास का एक बार फिर से नमस्कार। पुनः स्वागत आप सभी का श्रोताओं कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में। और सप्ताह के श्रोता में आज हमारे मेहमान कौन है? आज हमारे मेहमान हैं भिलाई चौरादा के डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी जी, जिनसे हमने की है बातचीत और हमने जाना है उनके पसंद के गीत और साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे बातें हमने की है। तो ज़्यादा बातें हम ना करें, सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे आज के सप्ताह के श्रोता डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी जी के पास। तो बहुत बहुत स्वागत है नौशाद अहमद जी आपका हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में।
जी अनिल जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सलाम आदाब है।
जी जी नमस्कार जी नमस्कार। तो नौशाद भैया, अब आप आज हमारे सप्ताह के श्रोता हैं तो हम आपके बारे में कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पूरा संपूर्ण परिचय जानना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई, जन्म कहाँ हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से हमें बताएं।
मेरा जन्म जिला जौनपुर
जी
के सिकरारा गांव में हुआ। सन 1969 को छह महीने की उम्र में हम भिलाई छत्तीसगढ़ आ गए। हमारे दादा और पिताजी
जी जी
भिलाई में खाने कमाने के तलाश में आए हुए थे।
जी जी,
बस यहीं से जिंदगी की शुरुआत हुई भिलाई छत्तीसगढ़ में। और यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की। थोड़ा तो गरीबी, माली हालत भी ठीक नहीं थी, फिर भी पढ़ाई की है। और फिर भिलाई में हायर सेकेंडरी स्कूल पास किए और 1984 में चूंकि 11th का बोर्ड खत्म हो गया, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, पढ़ाई करें क्या करें, फिर हमने मेडिकल लाइन चुना। तो RMP का कोर्स किया।
अच्छा,
वैद्य विकारण। जी जी, अल्टरनेटिव। उसके बाद रेडियो श्रोता से भी जुड़े 1982 से, जो रेडियो सिलोन में सबसे पहले जुड़े। फिर उसके बाद अन्य रेडियो स्टेशनों में जुड़े और अब तक जुड़े हुए हैं। रेडियो अर्पा से भी जुड़े, बहुत अच्छा रेडियो अर्पा का प्रोग्राम चल रहा है।
जी जी,
सभी रेडियो श्रोता बहुत खुश हैं
जी।
और प्रस्तुति बहुत अच्छा रहता है
जी,
पूरे अनाउंसर उद्घोषकों का
जी,
संज्ञा जी का,
अमिता
जी का, और आप सभी का सुनते रहते हैं और सभी का फरमाइश पूरी होते रहती है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया उर्दू सर्विस के अनाउंसर नईम सिद्दीकी जी और समीम उस्मानी जी भी इसमें भाग लेते हैं।
जी जी,
ये बहुत मकबूलियत है रेडियो पर।
ये सब आप सभी का स्नेह है कि रेडियो अर्पा को आप सभी पसंद कर रहे हैं और रेडियो अर्पा का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आ रहा है। तो नौशाद जी, हम आगे आपके बारे में और भी कुछ जानकारी लेंगे, पर उससे पहले इस पड़ाव में हम आपकी पसंद का पहला गीत जानना चाहेंगे।
मेरा पहला गीत फिल्म महान का है 1983 में अमिताभ बच्चन फिल्म अभिनेत, आशा भोसले और आर डी बर्मन जी की आवाज में है। संगीत भी आर डी बर्मन जी का है
जी,
और गीतकार अंजाम है
जी। गीत के बोल
है, ये दिन तो आता है।
तो बहुत अच्छा गीत आपने चयन किया है और गीत के संदर्भ में जो जानकारी भी आपने दी, जो क्रेडिट्स आपने बताए, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म महान का ये गीत हम सुन रहे थे हमारे आज के सप्ताह के श्रोता डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी जी के पसंद पर। अब आइए करते हैं उनसे आगे बातचीत और उनके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं मितान जी। तो नौशाद अहमद जी, इस गीत से पहले हमने आपके बारे में पूरा परिचय जाना, अब हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार के बारे में आप जानकारी हमें दें।
हमारे परिवार में बेगम हमीदुन सिद्दीकी जो हमारी धर्मपत्नी जी है
जी जी जी,
जो हाउस वाइफ है, और दो बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे जिशान अहमद सिद्दीकी जो मैकेनिकल इंजीनियर कर चुके हैं।
वाह, कहाँ से किया इन्होंने?
ये भाटापारा से किए हैं, पॉलिटेक्निक से।
जी जी, और अभी क्या कर रहे हैं?
अभी कोचिंग कर रहे हैं, अभी कोई अभी तो काम नहीं है, है तलाश भी है, कोचिंग भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं रेलवे ये सब का।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी जी, आगे बताएं।
और छोटे बेटे हैं शाहनवाज अहमद सिद्दीकी जी जो उदानिकी से कर रहे हैं, रायपुर कृषि एग्रीकल्चर जो में आता है, जो उदानिकी हॉर्टिकल्चर।
जी 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 जी,
हाँ वो कर रहे हैं, अभी फाइनल है इस साल।
जी,
फाइनल ईयर है उनका उदानिकी हॉर्टिकल्चर रायपुर से, धमतेश्वरी कॉलेज है।
जी जी जी,
और रेडियो श्रोता से भी जुड़े हुए हैं साथ में सब पूरे परिवार।
जी,
हमारी माता जी का तो निधन हो गया है, पिताजी का भी निधन हो गया है,
आशीर्वाद उनका बना हुआ है जहाँ भी है वो।
हमारे कई रिश्तेदार यहाँ बसे हुए हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है।
अच्छा, बताएं बताएं।
हाँ, हमारे फूफा जान है जो अलहजा मिलत नजर नगर मुंबई में रहते हैं, और कई फिल्मों के गीतकार है वो।
अच्छा, बताएं थोड़ा सा विस्तार से।
नवाब आजू उनका नाम है, आप जानते ही होंगे।
अच्छा, ये तो बहुत फेमस हमारे गीतकार हैं ये तो।
जी जी जी, कई सीरियल बनाए हुए हैं, सास भी कभी बहू जानते ही होंगे, फेमस।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
एकता कपूर के कई जितने भी सीरियल हैं उनके डायलॉग उनके टाइटल सॉन्ग लिखते रहे हैं, और हिंदी फिल्मों के गीत पॉपुलर हुए, जैसे हुई यहाँ खनम और दिल मुस्कुराया,
फिल्म साथी का गीत
साथी याद आया।
जी जी जी,
और बाजीगर हो बाजीगर, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, हम सब चोर हैं सामली सलोनी तेरी झील सी आंखें।
जी जी,
सब नवाब आरती साहब के लिखे हुए सैकड़ों गाने हैं।
तो ये आपके सगे क्या लगते हैं बताएं आप नौशा जी?
हमारे फूफा जान हैं।
सगे फूफा जी हैं?
हाँ जी जी।
वाह वाह वाह, तो बहुत हमारे बात। जी जी, और बताएं।
आते रहते हैं त्योहार में, आते रहते हैं।
जी जी जी,
अभी ईद में आएंगे वो।
जी जी,
बकरीद बोलते हैं इनको, त्योहार में वो आते हैं।
जी जी जी,
साल में एक बार
जी
मुलाकात होती है।
तो अगर हो सके तो हमें खबर कीजिएगा, तो हम मिलकर के उनसे भी अगर साक्षात्कार करने का अगर वो मौका दे तो हम उनका साक्षात करना चाहेंगे, तो हमें बताइएगा जरूर। बहुत अच्छा लगा मितान जी ये जान करके कि आप इतने करीबी रहे हैं नवाब आजू के जी के, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसी बात पर उन्हीं की पसंद का कोई गीत सुन लें क्या, आपकी पसंद पर अगर आप चाहें तो।
ये 1983 का किशोर कुमार जी लता जी की आवाज में है, क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा है
जी,
उस पर ये गीत है, तेरी मेरी शादी होगी।
लोग देंगे मुबारकबाद।
चलिए तो सुना दें आप।
जी बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
उसके बाद
फूल खिले,
उसके बाद
चैन गया,
उसके बाद
प्यार हुआ,
उसके बाद
तेरी मेरी शादी हो।
किशोर कुमार के स्वर में, हमने युगल स्वर में भी हमने सुना ये गीत नौशाद अहमद सिद्दीकी जी के पसंद पर, जो कि सप्ताह के श्रोता बने हैं हमारे श्रोता आज। और इस गीत से पहले हमने बहुत अच्छी बात उनसे जानी कि नवाब आजू जो कि हैं इनके सगे फूफा जान हैं, और उन्होंने बहुत सी अच्छे अच्छे गीतों की रचना की है। तो कभी मौका लगेगा श्रोताओं तो हम उनसे भी साक्षात्कार करके आप तक उनकी बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी जी से और जानते हैं उनकी आगे की जीवन यात्रा। तो नौशाद अहमद जी, जैसा कि आप अपने नाम के साथ लिखते हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, तो ये डॉक्टर जो आप लिखते हैं वो किस तरह के प्रैक्टिस के संदर्भ में आप लिखते हैं मितान जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं अपने काम के बारे में।
ये जनरल प्रैक्टिशनर है जो एक छोटी सी बस्ती जो जी केविन 14 आता है, गांव है वहाँ, सब नीचे तबके के लोग रहते हैं
जी जी,
उनका सेवा करता हूँ। 30 साल से सेवा करता हूँ।
वाह वाह वाह।
नहीं, ये है कि जो भी दे देते हैं पैसा और ले लेते हैं किसी से, जिसके पास नहीं है उससे पैसा नहीं देते हैं, फीस नहीं लेते हैं।
अच्छा
जी जी।
वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई अहमद जी, कि जिनके पास पैसे नहीं होते उससे आप फीस नहीं लेते, और जो देते हैं उनसे ही आप लेते हैं, तो ये तो एक तरह से सेवा का ही कार्य है
जी, ये इलाज का, तो मरीजों की सेवा खिदमत कर देते
जी जी। मतलब दरअसल हम ये समझ पा रहे हैं आपकी इस बात से कि दरअसल दिस में सेवा भाव को लेकर के डिग्री दी जाती है, आप पूरी तरह से उसको पालन कर रहे हैं। नहीं तो आजकल के इस दौर में तो डॉक्टर लोग जो है सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ों को गलत कर देते हैं कभी कभी, कि वो मतलब मरीज के हित में नहीं होता वो। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप उस एक शपथ जो दी जाती है सेवा कार्य के लिए, वो आप उस शपथ का पूरा पालन कर रहे हैं।
कई दोस्त बोलते हैं आप वहीं के वहीं हो, उस गांव से कहीं दूसरे जगह आप खोल लीजिए ताकि कुछ बैंक बैलेंस ये सब हो जाएगा।
जी 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 जी।
मैं बोलता हूँ कि हमारे यही हमारे माई बाप हैं।
जी जी।
इसी गांव के हमारे जितने भी मरीज लोग हैं, जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, इनसे त्याग मिलता है।
जी जी जी।
ये अपना घर है, अपना परिवार है।
जी जी। तो नौशाद जी, इस 30 साल के सेवा कार्य के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, बहुत सी ऐसी बातें हुई होंगी जो आपको याद जिंदगी भर के लिए रह गई होंगी, तो कोई ऐसे काम जो घटनाएं बताएं या कोई ऐसा अनुभव बताएं जो हमारे सुनने वाले श्रोताएं जो हैं उनको प्रेरित कर जाए कि वो भी किसी तरह से सेवा करें, तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा हमें ये जानकर आपके श्रीमुख से।
हाँ, एक वाक्य ऐसा आया था बहुत, 2015 में आया था।
जी जी, बताएं बताएं
जी। एक मरीज बहुत गरीब था, 50-60 साल का एज था, वो पेट दर्द से बहुत प्रताड़ित था, इलाज के लिए पैसा नहीं था, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तो उनके पेट दर्द ऐसा हो गया था कि सहन नहीं था। तो मैंने मतलब उनको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की गाड़ी लगा के उनको भर्ती कराया ध्रुव।
अच्छा जी जी जी।
हाँ, तो वहाँ पे उनका इलाज हुआ। डॉक्टर लोग बोले अगर समय से पहले ना लिए आप तो बहुत अच्छा हुआ, जान बच गई, नहीं तो वो इस दुनिया से चले जाते। आप बहुत अच्छा काम की कि समय से पहले ला दिए यहाँ पे।
जी जी जी।
वो क्या है, उनको क्या पथरी का शिकायत हो गया था बहुत बड़ा।
अच्छा जी जी
जी जी। पीट में पथरी हो गया था। तो फिर वहाँ इलाज हुआ, स्वस्थ हो गया, पथरी भी निकल गया ऑपरेशन से, बहुत बड़ा पथरी हो गया था।
अच्छा ओ।
जी जी
जी जी।
तो वो जब मैं सोचता हूँ तो चलिए हमने नेक काम किया।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही नेक काम है ये, तो बहुत ही अच्छा नेक काम आपने किया।
बहुत तो आशीर्वाद दिए बहुत।
जी जी जी।
परिवार वाले नहीं साथ दी, लेकिन एक गैर ने साथ दिया।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जी जी जी, बताएं।
बस वही एक नेक काम हुआ।
जी जी नहीं खैर ये तो आप कह रहे हैं कि बस वही एक नेक काम हुआ, पर जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस है उसमें रोज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नेक काम कर ही रहे हैं।
कई कई हाँ जी आते रहते हैं।
जी जी क्योंकि वो जिस तरीके की आपकी प्रैक्टिस आपने हमें बताई उससे तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई फीस नहीं लेना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है
जी,
क्योंकि आज के समय में तो डॉक्टर बिना फीस के देखता नहीं है, तो वहाँ तो आप फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं गरीब लोगों की, वो बड़ी बात है। तो मिताजी हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रैक्टिस के दौरान देखा गया है कि एक डॉक्टर जो है बहुत लास्ट समय तक मरीज को अपने साथ रखता है कि ठीक है जब तक ये मेरे पास आता रहे तब तक ठीक हो, और जब उसके हाथ से बाहर की चीज़ हो जाती तब वो रिफ़र कर देते हैं, वो है ना?
नहीं, तो, नहीं है।
अच्छा
जी मैं बस खाया सिर्फ एक बार बुलाने से फिर एक बार और जैसे आराम नहीं हुआ तो एक बार और।
अच्छा जी जी
आके दिखा लो आप।
जी 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 जी
जी
मतलब फॉलो अप के लिए एक बार सेकंड टाइम बुला लेते हैं, उसके बाद फिर अगर नहीं रहा है तो फिर तब फिर आप उसके बाद
फिर हॉस्पिटल रिफर कर देते बस एक बार या दो बार बस उससे ज्यादा नहीं।
बढ़िया
बस फिर अपने से नहीं हो पाएगा फिर बड़े हॉस्पिटल नर्सिंग होम में या सरकारी हॉस्पिटल में रिफर कर देते।
ये भी एक तरह से जन सेवा ही है मितान जी कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं आपकी। ठीक है मेरे हाथ की बाहर की चीज़ है तो अब इसको सही तरीके से सही दिशा में इसको इलाज के लिए भेज दिया जाए। दरअसल मैं वही आना चाह रहा था, वही बात कर रहा था कि बहुत से डॉक्टर जबरदस्ती ट्रीटमेंट के नाम में अपने पास बुलाते रहते हैं बुलाते रहते हैं बुलाते रहते हैं और उसको सही दिशा में ट्रीटमेंट न दे करके या सही दिशा न बता करके वो खुद ही अपना वो करते। तो जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं वो भी बहुत बड़ी जनसेवा है या बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे मरीजों को उसके सही दिशा में जानकारी देकर प्रैक्टिस के लिए या इलाज के लिए भेज देते हैं। तो मितान जी अब इस पड़ाव पर तीसरा गीत सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का। अब हम
ये फिल्म में बाजी का है 1984 का है। गीत है मेरे साथी और जीवन साथी।
जी 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 बिल्कुल।
और फिल्म है बाजी 1984 का है, स्वर है सबीर कुमार जी और लता जी। संगीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी।
बहुत ही अच्छा गीत आप चयन करके लाए हैं आज हमारे सप्ताह के श्रोताओं के लिए मितान जी अपनी पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं फिल्म बाजी का ये गीत।
मेरे साथी हो जीवन साथी, मेरा साथ निभाना हो किसी मोड़ पे छोड़ न जाना। मेरे साथी हो
चौरासी में बनी फिल्म बाजी का ये गीत हम सुन रहे थे सप्ताह के श्रोता के हमारे जो हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी जी की पसंद पर। इनसे ढेर सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम इनके माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहे हैं श्रोताओं। और अब समय है कि इनसे ये जानने का कि ये जैसे अरपा रेडियो के कार्यक्रम को सुनते हैं मितान जी, तो अरपा रेडियो से जुड़ाव आपका कैसे हुआ?
अरपा रेडियो से जुड़ाव अनिल श्रीवास
जी
जो हैं ये हमारे भगत राम साहू जी के निवास में आए हुए थे एक प्रोग्राम में।
जी जी जी
उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने हमें जोड़ा और
जी
उससे पहले हम सुन भी रहे थे।
जी जी जी
तो बहुत अच्छा लगा
जी उस कार्यक्रम से। वो फार्म हाउस का शायद ओपनिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ था, फार्म हाउस में उनका कुम्हारी वाला जो था वहाँ भेंट हुई थी हमारी।
जी
जी जी मगर घटा शायद जगह
फेमस नाम हो गया है।
जी 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 परसराम भैया ने फेमस कर दिया उसे उस जगह को। तो वहीं आपसे हमारी पहली मुलाकात।
खेत का इलाका है, ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती है।
जी जी जी
जी वहाँ पे जाओ तो एकदम स्वस्थ लाभ मिलता है।
जी जी
चौंधी चौंधी हवाएं आती खेतों की फसलों की।
ठीक बात, सही कहा सही कहा।
जी
हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम को आज, वो कभी अगर मौका लगे तो परसराम भैया के फार्म हाउस में जरूर एक बार घूमने जाएं। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो मौसम है और वहाँ के आसपास का जो आनंद है उसको जरूर महसूस करें। और नौशाद जी, उस समय आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी हमारी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा था आपसे मिल करके, और तभी से मन में था कि कभी मौका लगेगा तो हम आपका इंटरव्यू करेंगे और आपके बारे में विस्तार से जानेंगे।
तो मैं शायर भी हूँ।
हाँ, मैं जस्ट उसमें आने ही वाला था कि इसके अलावा जो है, प्रैक्टिस के अलावा जो है, वो आपको किस तरह के और शौक है, तो आपने बता ही दिया शायर है, तो शायरी के संदर्भ में फिर बातें बताएं अपनी कुछ।
शायरी में कई जगह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरों में शिरकत करते रहते हैं।
वाह,
कई बड़े बड़े शायरों कवियों के साथ मंच साझा किया है।
वाह, जैसे
जैसे मुनव्वर राना जी, निधव फाजली जी, राहत इंदौरी जी।
वाह वाह, बड़े बड़े नाम हैं ये तो कवि।
नवाब अर्जुन साहब जी के साथ भी
जी जी वाह वाह वाह
मंच साझा किए
जी जी जी। तो मितान जी, इस मुझे लगता है कि इस समय आपका एक रचना तो बनती है हमारे श्रोताओं के लिए
जी,
कोई बढ़िया सी रचना सुनाए हमारे श्रोताओं को।
पहले तो मैं गजल सुनाता हूँ, फिर उसके बाद हाथ से अगर होगा तो एक हाथ से सुना देगा।
एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा समय आपका है, आप जो जो सुनाना चाहें बिल्कुल सुनाएं।
गजल का मतलब है समाज को माले
जी,
इस लह की रस्म निभाना बहुत जरूरी है। लह की रस्म निभाना बहुत जरूरी है, दिलों को पहले मिलाना बहुत जरूरी है।
वाह,
दर्स मतलब सबक, ज्ञान
जी जी।
किताब दर्स की रखने से कुछ नहीं हासिल, इसे तो पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है।
वाह, बहुत सुंदर जी।
और वतन की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए, मातृभूमि की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए, अब इसका कर्ज चुकाना बहुत जरूरी है।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना जी जी।
मातृभूमि की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए
जी,
अब इसका कर्ज चुकाना बहुत जरूरी है। और ये शेर उन नौजवानों के लिए सीख है, सबक है
जी जी,
कि हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे।
जी,
हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत जरूरी है।
वाह वाह वाह, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात।
हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के जो नौजवान है
जी जी,
उनको माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं
जी, बिल्कुल
शादी भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, माँ बाप को वृद्धा आश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं।
बिल्कुल सही कहा जी जी।
तो मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं घर के, वो दुनिया को देखे हुए रहते हैं।
सही कहा,
कोई भी काम सडनली नहीं कर देते
जी जी,
मतलब सोच समझ के काम करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
और नौजवान होते हैं जो गर्म खून होते हैं, उनको एकदम सडनली काम होना,
बिल्कुल सही कहा, तुरंत
वो काम सडनली खराब हो जाता है।
सही कहा,
नहीं हो पाता है
जी जी।
और बुजुर्ग जो होते हैं वो सोच समझ कर काम करते हैं, रुक के
उनका अनुभव रहता है,
निर्णय लेते हैं। निर्णय लेते हैं
जी जी, सही कहा।
तो बुजुर्ग घर के बरकत है, इसलिए बुजुर्ग को वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर ना करें।
सही कहा,
तो ये शेर, हाँ ये शेर उसी पर है, उन न जाने के लिए, कि हवा जमाने की तुमको कहीं ना बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत जरूरी है। और ये शेर देखे कि भटक गए हैं जो तारीख रास्तों में उन्हें,
भटक
गए हैं जो तारीख रास्तों में उन्हें, चिरागे राह दिखाना बहुत जरूरी है। रोशनी की राह,
बहुत सुंदर बहुत सुंदर,
अंधेरे की राह भटक गए हैं
जी जी जी,
जो लोग उनको रोशनी की राह दिखाना बहुत जरूरी है। भटक गए हैं जो तारीख रास्तों में उन्हें, चिरागे राह दिखाना बहुत जरूरी है। और ये मक्के का शेर है समाज को मारने की, जो चाहते हो आत्मा की बुलंदी नौशाद,
जो चाहते हो,
जो चाहते हो आत्मा की बुलंदी नौशाद
जी जी,
परों में ताप का लाना बहुत जरूरी है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो जीत तक कहाँ पहुँचेंगे।
बिल्कुल बाबा।
जो चाहते हो आसमां की बुलंदी नौशाद, परों में ताप का लाना बहुत जरूरी है, ये रस्म चुला की रस्म निभाना बहुत जरूरी है, दिलों को पहले मिलाना बहुत जरूरी है।
वाह, एक एक लाइन जो है आपकी जो है इतनी अर्थ से भरी हुई है नौशाद जी, कि बहुत ही गहरी गहरी बात कहती जाती है आपकी एक एक लाइन, बहुत ही अच्छा लग रहा। तो आप हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता तो आज बने, लेकिन हमारा एक कार्यक्रम भी जाता है हरपा रेडियो के लिए श्रोताओं की कलम से, उसमें अपनी रचनाएं क्यों नहीं भेजते मितान जी? बिल्कुल, आप भेजिए हमारे कार्यक्रम श्रोता की कलम के लिए अपनी रचनाएं, और हम उसे आपकी स्वर में रिकॉर्ड करके लगातार जब जब मौका मिलेगा सुनाएंगे जरूर।
जी जी,
चलिए, बहुत ही अच्छा लगा।
और सुनाए का?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए, एक हास्य तो बनता है। चलिए,
गजल का दूसरा रूप है हजल, जिसको हास्य
जी जी अच्छा
का रूप मानते हैं।
जी जी,
तो ये सुने, हजल का मतलब है समाज संभाले
जी जी,
कि वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई।
जी जी, वो और ही होंगे,
वो और ही होंगे
जी जी,
जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नजर खूंखार खा गई।
वाह वाह वाह,
वो और ही होंगे
जी जी,
जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नजर
खूंखार खा गई,
बुखार खा गई
जी,
और बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई। बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बगनी का हाय सारा ही अचार खा गई।
वाह वाह वाह, बहुत।
बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बगनी का हाय सारा ही अचार खा गई। और कैसे रहे बताओ अब अमनो अमा के साथ, सुख शांति के साथ। कैसे रहे बताओ अब अमनो अमा के साथ, घर का सुकून तो रोज की तकरार खा गई।
वाह वाह वाह,
घर का सुकून तो रोज की तकरार खा गई, और इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब। इस वास्ते
बकरी को
दिया है अभी जुलाब, बेगम का मेरी नौ लखा ये हार खा गई।
वाह वाह,
इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, बेगम का मेरी नौ लखा ये हार खा गई। और ये शेर देखे कि चड्डी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहाँ, चड्डी सुखाया करते थे बच्चे मेरे धाम, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई।
बहुत गहरी बात,
आया करते थे बच्चे मेरे जहाँ, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई। और मुद्दत के बाद आज ही जिसपे छपा था मैं, ये मक्के का सेरा जो तखल्लुस उसने जोड़ते हैं।
जी जी जी,
मुद्दत के बाद वर्षों के बाद, मुद्दत के बाद वर्षों के बाद आज ही जिसपे छपा था मैं, नौशाद मेरी बकरी वो अखबार खा गई।
वाह,
मुद्दत के बाद आज ही जिसपे छपा था मैं, नौशाद मेरी बकरी वो अखबार खा गई, वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नजर खूंखार खा गई।
वाह वाह वाह,
अब बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बगनी का हाय सारा ही अचार खा गई।
वाह वाह, बहुत सुंदर रचना है, हमें मालूम नहीं था मितान जी कि आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, और बिल्कुल आपकी रचनाओं का हमें इंतजार रहेगा अब तो हमारे कार्यक्रम श्रोता की कलम के लिए।
जी जी,
इसके
जी,
बारे
जी,
में बिल्कुल मैं आपको थोड़ा विस्तार से अलग से बता दूंगा कैसे उसको कैसे क्या है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप हमें अपनी रचनाएं जरूर प्रेषित करें, तो हम अपने रेडियो के माध्यम से बाकी श्रोताओं तक पहुँचाएँ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सुंदर दो रचनाएँ आपने अपने माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई मितान जी, बहुत ही अच्छा लगा। अब समय है आपकी पसंद का चौथा गीत सुनने का।
फिल्म का नाम है सलामे मोहब्बत, 1983 की बनी फिल्म।
हाँ हाँ जी,
मोहम्मद रफी की जी की आवाज में है।
जी जी,
गुलों के रंग सितारों की रोशनी।
जी जी जी,
आवाज दिए हैं मोहम्मद रफी जी, सुना दें।
बिल्कुल, चलिए अब आपकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म सलामे मोहब्बत का ये गीत।
गुलों के रंग सितारों की रोशनी दे दूं, जो तुम कहो तो तुम्हें अपनी शायरी दे दूं। गुलों के रंग सितारों की रोशनी दे दूं।
तो श्रोताओं, फिल्म सलामे मोहब्बत का ये गीत अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी के स्वर में, जिसे पसंद किया था हमारे आज के सप्ताह के श्रोता डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी जी ने, जो कि भिलाई चरौदा के निवासी हैं। और इनसे लगातार हम बातचीत करते रहे, बहुत सारी चीज़ें जाने, और सबसे अच्छी बात कि इनकी रचनाओं को हमने सुना आज। और इस रचनाओं को सुन हम जान पाए कि हमारे बीच हमारे एक ऐसा श्रोता है जिनकी रचनाएँ इतनी गहरी बात कहती हैं, और मजाक के बीच में बहुत सी गहरी बात है। तो नौशाद जी, अब हम हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, जिसमें हम अपने सप्ताह के श्रोता से हम हर बार यही पूछते हैं कि हमारे जो अर्पा रेडियो के जो श्रोता हैं या और भी कोई जो श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है आज?
मेरे लिए संदेश है श्रोताओं को
जी
कि रेडियो सुनते रहें।
जी जी,
और फरमाइश भेजते रहें
जी,
और किसी भी उद्घोषक उद्घोषिका को ये ना बोले कि हमारी फरमाइश शामिल नहीं किए।
जी जी,
कई श्रोताओं का शिकायत रहता है
जी,
उद्घोषक उद्घोषिका ये हमारा नाम शामिल नहीं करते, शामिल सब होता है, देर होता है थोड़ा, लेकिन शामिल करते हैं।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। जी जी,
रेडियो अर्पा सुनते रहे, सभी रेडियो सुनते रहे, मेरा ये कहने का मतलब है
जी,
कि लोग फरमाइश भेज देते हैं और सुनते नहीं है रेडियो।
जी जी जी, ये भी सही बात,
रेडियो सुनना बहुत जरूरी है।
जी जी,
उससे ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत दिल दिमाग दुरुस्त रहता है रेडियो सुनने,
बहुत अच्छी बात।
कई जी, कई जगह के खबर सुनने को मिलते हैं
जी,
मालूमात होते हैं
जी,
इसलिए मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि रेडियो सुनते हैं।
जी जी,
चाहे कोई भी रेडियो हो, रेडियो अर्पा से लेके
जी
सभी रेडियो सुनते हैं, सभी आकाशवाणी स्टेशन सुनते हैं।
जी सही का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज अहमद जी, इस बात के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब इसी पड़ाव पर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और एक बार पुनः आपका शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने अपनी रचनाएं हमें प्रेषित की, हमें सुनाई, और इतने कम समय पर आपने समय दिया। अब आगे
एक गाना मेरा पसंद का और है आखिरी।
अच्छा जी, बता दे।
मेरा मकबूल बहुत चहेता गाना है ये।
जी जी, बता दे बता दे।
फिल्म है अमृत, 1986 की बनी फिल्म है।
जी जी,
बोल है दुनिया में कितना गम है।
जी जी, मेरा गम कितना कम है।
हाँ जी, मोहम्मद अजीज की आवाज में है, इसको सुना देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद पर आज हम इसी गीत को सुनते सुनते ही कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो इस गीत को सुनाने से पहले आपसे हम लेते हैं अनुमति, और अपने श्रोताओं को आपकी पसंद पर सुनवाते हैं ये। तो पुनः आपका एक बार फिर से शुक्रिया। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
शुक्रिया। जय हिंद, जय
छत्तीसगढ़। जय
हिंद। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।